एहज़कएल अध्याय 48। इस अध्याय में परमेश्वर उसे अपने देश की सीमाएं बताता है। उत्तर में दमिश्क से लेकर दक्षिण तक तथा पूर्व में, तब वो उस देश में कुलों का विभाजन करता है। दूरस्थ उत्तर का क्षेत्र दान को दिया गया है, उसके दक्षिण में आशेर को, नप्ताली को, मनशे को, एप्रेम को, रूबिन को, यहूदा को, जिसमें याजकों का और मंदिर का स्थान है। ये स्थान सदैव प्रभु का और याजकों का होगा और वो कभी बेचा नहीं जाएगा। तब उसमें से बची भूमि राजकुमार की होगी, उसके दक्षिण में बिन्यामिन की, शिमोन की, इसकार की, जबुलून तथा गाद की होगी। इस प्रकार वे सीनाई के निकट पहुंचे जा रहे हैं। इस तरह वो पूरा क्षेत्र हरा भरा और खेती के योग्य होगा। जब भविष्यवाणी पूरी होगी तब रेगिस्तान गुलाब के समान फूलेगा, वहां जल के सोते होंगे, सूखी भूमि पर भी झरने होंगे तथा प्रभु के सामर्थ्य से उस देश का वरन संपूर्ण पृथ्वी का पुनरुद्धार होगा। उस नगर में 12 द्वार होंगे जिनका नाम इसराइल के वंशजों के कुलों पर होगा। उत्तर के 3 द्वार रूबिन, यहूदा और लेवी के होंगे, पूर्व में यूसुफ, बिन्यामिन और दान के, और दक्षिण में शिमोन, इसाकार और जबुलून के, तथा पश्चिम में गाद, आशेर और नप्ताली के। एहज़कएल अध्याय 48 पद 35। नगर की चारों आलंगों का घेरा 18,000 बांस का हो, और उस दिन से आगे को नगर का नाम यहोवा शमा रहेगा। ये प्रभु का नगर होगा, अतः इसका नाम बड़ा ही सुंदर है, यहोवा शमा, अर्थात यहोवा वहां है। मैं प्रसन्न हूं कि हमारा एहज़कएल का अध्ययन पूरा हो गया, क्योंकि मैं इसकी पूरी समझ का दम नहीं भरता। मैं केवल थोड़ा ही ज्ञान रखता हूं। जब सिद्ध आ जाएगा तब ये अल्प ज्ञान विलोप हो जाएगा। जब परमेश्वर हमें पूरा ज्ञान प्रदान करेगा, परंतु वो आज ही प्रदान करे मेरी समझ में ये जरूरी नहीं है। वो आज मुझे क्यों इन बातों की स्पष्ट समझ प्रदान करें? ये तो वास्तव में इसराइल के लिए है, ये प्रभु के राज्य की बातें हैं। आवश्यक नहीं कि मैं इन बातों को समझूं, क्योंकि समय आने पर मैं सब कुछ देख ही लूंगा। जब मैं उस नगर में चलूंगा फिरूंगा, उन द्वारों में से निकलूंगा, तब मैं कहूंगा कि एहज़कएल ने बड़ा सही वर्णन किया था। अभी मुझे धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु तब आमने सामने देखूंगा। जब हम दानियल का अध्ययन करेंगे तब व्याख्या में आनंद आएगा, क्योंकि उसकी भविष्यवाणियां संसार में पूरी हो रही है। वे भविष्यवाणियां हमसे और हमारे समय से संबंधित है, इसलिए परमेश्वर ने इनके विषय हमें अधिक प्रकाशन प्रदान किया है। अध्याय 39 तक वे हमसे संबंधित है, परंतु जब वे भविष्य में प्रवेश करती है तब वो हमारे समझने का विषय नहीं है, और परमेश्वर ने भी हम पर अभी प्रकट नहीं किया है। यही कारण है कि लोग महाक्लेश से पूर्व कलीसिया के उठाए जाने के विपक्ष में विवाद करते हैं। उनके अनुसार ये ऐतिहासिक कलीसिया का धर्म सिद्धांत था। ये तो बाद में उभरा विचार है, क्योंकि आरंभिक कलीसिया ने इसकी शिक्षा नहीं दी, वे इसे स्वीकार नहीं करते हैं। मैं उनसे सहमत नहीं हूं, क्योंकि आरंभिक कलीसिया की बहुत सी शिक्षाएं हैं जिन्हें मैं नहीं मानता हूं। ओरिजन ने बपतिस्मा द्वारा पुनर्जन्म सिखाया। उसने बच्चों की बपतिस्मा की शिक्षा दी, परंतु बाइबल ऐसा कुछ नहीं सिखाती है। ये आरंभिक कलीसिया के धर्म सिद्धांत है जो बाइबल आधारित नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि आरंभिक कलीसिया के सब धर्म सिद्धांत बाइबल आधारित नहीं है। दूसरा, परमेश्वर ने मार्टिन लूथर को कलीसिया के उठाए जाने का प्रकाशन क्यों दिया, जबकि उसके जीवन काल में ऐसा होने वाला नहीं था? यह ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार की एहेस्केल की भावी भविष्यवाणियां हमारी समझ से बाहर है, क्योंकि वे हमारे समय की नहीं है। ये अवश्य नहीं है कि परमेश्वर हमें उन बातों को स्पष्ट रूप से समझाएं। वे भविष्य की बातें हैं और अलग लोगों के लिए है। अतः कलीसिया का उठाया जाना हमारे समय की घटना है। जब दानियल भविष्यवाणियों की समझ मांग रहा था, तब परमेश्वर ने उससे कहा कि उन पर मोहर लगाकर वो उन्हें रख दे, क्योंकि वे अंतिम समय से संबंधित है। उस समय ज्ञान बढ़ेगा। भजन के लिखने वाले ने भविष्य के संबंध में लिखा, जब इसराइल फिर बसाया जाएगा, कि ये बातें आने वाली पीढ़ी के लिए हैं। अतः परमेश्वर ने ये सब बातें हमारे लिए लिखी है। अब क्योंकि हम उस युग में हैं, हमारी समझ अनावृत है। यद्यपि कलीसिया का उठाया जाना आरंभिक कलीसिया का विचार ना हो, ये निश्चय ही पौलुस का विचार था। कलीसिया का इतिहास आरंभ कहां से होता है? पौलुस की ये शिक्षा कलीसिया के इतिहास में विलोप हो गई। इसी प्रकार हमें मानना होगा कि अनेक मन भावन और महान सत्य भी इतिहास की भेंट चढ़ गए। कलीसिया वास्तव में अंधकार के युग से गुजरी है, और कारणों में एक ये भी था। ऐतिहासिक कलीसिया विज्ञान के विकास को बाधित करती थी, क्योंकि वे उन बातों की खोज कर रहे थे जो कलीसिया के विश्वास के विपरीत थी। जब उन्होंने टेलीस्कोप से सितारों को देखना आरंभ किया, तो कुछ बातें आरंभिक कलीसिया के विश्वास के प्रतिकूल थी। स्तिफनुस महासभा के सामने उनके इतिहास को दोहरा रहा था कि वे अपने पूर्वजों के विषय घमंड से कहते थे, हमारे पुरखाओं ने, परंतु सत्य तो ये था, ऐसा कौन सा भविष्यद्वक्ता था जिसे उन्होंने मार नहीं डाला? उसने उन्हें स्पष्ट कह दिया कि उनका इतिहास वास्तव में अंधकार से भरा था, अंधकार पूर्ण था। मैं कहूंगा कि कलीसिया का इतिहास भी अंधकार पूर्ण रहा है। मुझे तो इससे शर्म आती है। यदि कोई मुझसे कलीसिया के इतिहास की चर्चा करता है, तो मुझे लज्जा का अनुभव होता है, क्योंकि कलीसिया ने क्या नहीं किया है, वो मसीह का सच्चा प्रतिनिधित्व नहीं कर पाई है। अन्यथा आज अनेक विश्वासी होते। वो तो ठोकर का कारण रही है। उसने उन्नति और विकास को बाधित किया है। उसने मनुष्य को दबाया है। मैं कलीसिया के इतिहास से शर्मिंदा हूं। मैं इसका पक्ष नहीं लेता। मुझे ना तो वे गलतियां दोहरानी हैं और ना ही मैं उनकी गलतियों का जिम्मेदार हूं। जब लोग कलीसिया के अनैतिक कामों की, युद्धों एवं नरसंहार की चर्चा करते हैं जो मसीह के नाम में उसने किए, तब हमारा मुंह लटक जाता है। परंतु मसीह कहता है, ये मेरा काम नहीं था। मैं तो अपना मुंह खोल कर कहता हूं कि वो मसीही विश्वास के काम नहीं थे। मैं उनकी गलतियों का उत्तर नहीं दे सकता। हां, मुझसे मेरी गलती पूछिए। यही कारण है कि मैं आत्मा का मार्गदर्शन खोजता हूं कि मैं गलतियों से बचूं। ये वास्तव में एक महान उत्तरदायित्व है। इसलिए हमें परमेश्वर को खोजना है और बाइबल के आदेशों का पालन करना है। मुझे आत्मा का अनुसरण करना है कि मैं यीशु के अनुरूप प्रेम करने का खोजी बनूं और एक उत्तम उदाहरण बनूं जो परमेश्वर चाहता है कि उसकी संतान बने और करें। लोग कलीसिया के इतिहास के आधार पर कलीसिया को देखते हैं, परंतु आप उनकी धारणा में परिवर्तन ला सकते हैं। आप परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप आचरण करके एक उदाहरण स्थापित कर सकते हैं कि लोग कहें, देखो वो एक मसीही जन है। यदि आप इसराइल में यहूदियों से कलीसिया और मसीही समाज की चर्चा करें तो वे कहते हैं, कलीसिया वो ऐसी है वैसी है, मसीह जन वे ऐसे हैं वैसे हैं। हम उनसे कहते हैं, हे हम भी मसीही जन ही हैं। आप मसीही समाज की बुराई कर रहे हो, आपके कहने का मतलब क्या है? वे कहते हैं, नहीं नहीं, आप मसीह लोग नहीं हो, आप अलग हो। बड़ी विचित्र बात है कि हम फर्क देखते हैं। वे नहीं समझ पाते कि हमें मसीही जन कहे या क्या कहें, क्योंकि हम उन्हें प्रेम करते हैं और उनसे लगाव रखते हैं। आप एक बाइबल है जिसे संसार पढ़ता है। मसीही समाज की छवि आपके चरित्र पर निर्भर करती है। यीशु ने कहा, मत्ती अध्याय 5:16, तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम उनमें ना गिने जाएं जिनके लिए कहा जाता है, यदि ये मसीही लोग हैं तो हमें इनसे कोई लेन देन नहीं करना है। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम पृथ्वी के नमक होकर मनुष्यों में प्रभु यीशु मसीह का प्यास बढ़ाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपकी रक्षा करे और आपको अपने प्रेम से परिपूर्ण करे, आपकी चौकसी करे, जिससे हम सब परमेश्वर की परिपूर्णता और हमारे लिए करने की उसकी इच्छा को अंत ग्रहण कर पाए तथा आप सबसे ऊपर उसके प्रेम में आचरण करें, यीशु के नाम में।